हनुमान जी के संग से या भक्तों के संग में ऐसे हो गई जगत को पवित्र करने वाले कृष्ण ने स्वयं उनका संस्कार दाह संस्कार किया और उनकी प्रशंसा की। इसलिए साधु संग सबसे से गंधर्व अस्तरा नागा काली हरफ था, काली जो था कृष्ण के चरण अपने पत्नियों के संग से परम भक्तमान होकर के इस भवसागर को पा गया। उनकी पत्नियां बड़ी भयंकर थी। ब्राह्मण कुल में मथुरा के यज्ञ करने वाले ब्राह्मण लोग उनकी स्त्रियां परम भक्त थी, इन स्त्रियों के संग से इनका उद्धार हो गया। सुग्रीव जी, सुग्रीव कैसे थे बंदर जाति के, ये हनुमान के संग से ऐसे बन गए। हनुमान जी खूब बंदर लंगूर गज गज माने हाथी, वो किसके संग से अगस्त महाराज के संग से उसका उद्धार हो गया। गृद्ध ये जटायु और तुलाधर वैश्य वजन करता था ठीक से और भगवान का स्मरण करता था, उसी से भगवान को पार कर दिया। भगवत भक्त के ब्याज कुबजा व्रत की गोपियां, ऐसा कोई नहीं जो बिना साधु संघ के भगवान को कर गया। इसलिए साधु संघ से बढ़कर के नहीं है। श्रीमद् भागवत कहते हैं यदि कोई कृष्ण प्रेम चाहता है, अपने जीवन का कल्याण साथ जाना चाहता है तो साधुओं के संग में जाए और अनकंडीशनली उनके चरणों में समर्पण करके उनकी कथाओं को सुनकर के भगवान ने उनकी स्थिति बोला। जो जहां है वहीं पर स्थान है स्थिता, जो त्यागी है वह त्यागी, जो गृहस्थ है वो गृहस्थ, जो जहां पर है वहीं से भगवान का भजन करना आरंभ कर दे, भगवान का नाम करे। भगवान के नाम में जाति पाति का कोई प्रश्न नहीं, रुपये का कोई प्रश्न नहीं, पवित्र होने का कोई भी प्रश्न नहीं। जब मैं स्नान करके ही भगवान का नाम, किसी चीज की इसमें बंधकता नहीं। ऐसे नाम के द्वारा ही, ऐसे साधु संग में रह करके भगवान के नाम और हरि कथा के द्वारा हम कृष्ण प्रेम का ही लाभ पाते हैं। आज बहुत अधिक समय हो गया, 11:30 के करीब बज गया है, इसलिए आज मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। शाम को इसके बाद में श्रीमद् भागवत की और कथाएं होंगी और रात ही में शायद कथाएं समाप्त हो जाएंगी। कल हम लोग बाकी औशिष्ट जो कार्य है यज्ञ इत्यादि, यद्यपि एक भागवत ही यज्ञ है, सभी लोगों को आकर्षण करने के लिए जिनको उतनी रुचि भागवत को विश्वास नहीं है, इसलिए थोड़ा सा वो भी कर देंगे। आप लोग सभी लोग उसमें यज्ञ में आहुति देंगे, ये कृष्ण प्रेम, कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम हो, हमारा भागवत पढ़ना और सुनना हमारा सार्थक हो, इस नियत से आकर उसमें यज्ञ में आप लोग आहुति देंगे। फिर यहाँ पर जैसा व्यवस्था होगी प्रसाद इत्यादि की व्यवस्था लेकर के श्रीमद् भागवत का पूजन अर्चन कर सके आरती करके फिर हम लोग समाप्त हो गए।
अच्छा महाराज जी, एक एक तारीख में अच्छा पास में मलंगा जी के यहाँ बता रहे, इसलिए सभी शिष्यगण वहाँ उपस्थित हो जाए, अच्छा रहेगा। जो भी भगवान महाराज जी के नाम लेना चाहते हैं वो ही उपस्थित हों, जो क्या लेना चाहे छोड़ सकते हैं वो नाम लेने के लिए उपस्थित हो सकते हैं, महाराज जी नाम दान करेंगे उनको, ये व्यवस्था की गई है। और आज जो शोभा यात्रा जाएगी शाम को अशोक नगर मित्र मंडल में जाएगी, अशोक नगर जाएगा शोभा यात्रा, इसलिए शोभा यात्रा में अधिक से अधिक उपस्थित हों। आज महाराष्ट्री यहीं बजा देंगे, नेताजी के यहाँ बजा देंगे, जो भी कोई विचार विमर्श भी करना है किसी को, किसी भी प्रकार की चिंता करनी है वो प्रश्न कर सकता है, लेकिन महाराज जी समय बतलाएं तब करना।
बहुएं थी उनकी कितनी रोने लग गई, नाती इत्यादि सब रोने, राज्य के सभी लोग रोने लग गए। हिरण्यकश्यप को भी बड़ा दुख हुआ, जो हमारा बड़ा भैया इतना बलवान और विष्णु ने उसे मार दिया, उनको समझाने लगा। समझा करके कहता है कि देखो किस लिए तुम लोग रोते हो, मैं तुम लोगों को एक इतिहास एक कथा तुम लोगों को बताता हूँ, तुम लोग ध्यान पूर्वक सुनो। तो उनको समझाने, एक राजा थे बड़े प्रभावशाली थे, उनकी राजहलरी का केवल एक ही व्यक्ति था राजा, यदि उनको जीतने तो वो चक्रवर्ती हो जाए, इसलिए उन्होंने उसको जीतने के लिए चेष्टा की, किंतु युद्ध में स्वयं मारे गए, उनका सिर कट गया पैर कट गया, अंत में इनकी पराजय हुई। इनकी सेनाओं ने शाम को युद्ध बंद हो गया, उनके शरीर को ले आए लेकर के राजभवन में रखा, सभी लोग रोने लगे। जब रोने लगे इतना जोर से रोने लगे कि कोई सांत्वना देने लायक नहीं रहा, उसी समय महाराज ब्रह्म 5 वर्ष का रूप धारण करके उनके घर में आए। बोले जी भाई आप लोग किस लिए रोते हैं, तुम जाओ खेलो, 5 वर्ष का बच्चा तुम नहीं समझेगा जी किस लिए रोते। तो मैं तो खूब अच्छी तरह समझता, आप ही लोग नहीं समझ रहे। जैसे ये मर गए हैं, अच्छा मर गए इसलिए रो रहे हैं आप लोग, कहाँ गए कब लौटेंगे, कलकत्ता गए दिल्ली गए बॉम्बे गए वहाँ से लौट करके आएंगे कब लौटेंगे, तो वहाँ जले गए हैं जहाँ से नहीं आना कभी होता लौटना नहीं होता, कहाँ गए यहाँ से लौटना नहीं, मैं तो देखता हूँ कि यहीं पर सो रहे हैं। अरे कल यही तो बातचीत कर रहे थे तो ये तो सोए हुए, इनका शरीर तो यहाँ पर पड़ा हुआ है तो इनसे बातचीत कर लो। तो अब नहीं करते, क्यों, इसमें जो आत्मा थी वो निकल गई, तो आत्मा निकल जाएगी तो निकल जाने दो, वो तो है, समझ में आ रहा है, आत्मा चली जाए जाने दो, किंतु वो व्यक्ति तो है तो हाँ है इनसे बातचीत करो। तो नहीं, हम तुम लोग किसके लिए रो रहे हो, शरीर के लिए रो रहे हो ना आत्मा के लिए, शरीर के लिए यदि रो रहे हो तो यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो नहीं शरीर के लिए नहीं आत्मा के लिए। अच्छा आत्मा कितनी लंबी थी, गोरी थी ना काली थी, कैसा उसका रूप था, कभी देखा तो नहीं देखा था। तो जिसको देखा ही नहीं उसके लिए रोने की क्या जरूरत, इसके अंदर में आत्मा है वो मैं हूँ, अभी ये शरीर को ही मालूम कर रहे हैं या ये मैं हूँ, और जितना पछड़ा दुख है इसीलिए गीता में जो कृष्ण ने ज्ञान दिया, भागवत में जो ज्ञान दिया, वेदों में इसी चीज को बतलाने के लिए, ये समझो कि मैं ये शरीर हूँ। कभी हम लोगों का बंदरों का शरीर था, कभी भालू का शरीर था, कभी सुअर के रूप में आए, शरीर बदलता गया, अभी सुंदर मनुष्य का शरीर मिला है। यदि भजन नहीं करेगा फिर तुम्हारा ऐसे ही गति सुअर सुकर के रूप में आएगा, तब उस समय तुम इस शरीर को ही समझेगा जो मैं हूं। अभी चेतनता उनको नहीं आई, नहीं समझे ठीक से, मैं कहा जी अच्छी बात है, एक बात करो, तुम लोग सब तो रो रहे हो, मैं विश्व के सभी लोगों को बुला रहा हूं और सभी मल करके खूब जोर से रोए, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आएगा तो अकेले रोने से क्या, विश्व के लोग भी रोएंगे तो नहीं आएगा। अच्छा ये बतलाओ तो जब इनका जन्म नहीं था, शादी नहीं हुई थी, उनकी स्त्री को पूछता है तुम्हारी से उनकी शादी नहीं हुई थी तो ये तुम्हारे क्या लगते थे, विवाह के पहले पति और पत्नी में क्या संबंध होता है, कहाँ की कौन लड़की कहाँ का वो लड़का, वो तो समाज माता पिता भाई बंधु मिलकर के उसको ठीक कर दे। ये तुम लोग सारा जीवन एक साथ में रहे, अच्छा मान लिया कभी होता है जो पति आगे चला गया, कभी पत्नी आगे चली गई, आपकी मैया चली गई, पिताजी है ना, रोक नहीं सके उनको जाने से, रोक नहीं सके ना? अब वो जो चला गया निकल करके वो कहीं पास में भी है तो आप नहीं पहचान सकते है ना, क्योंकि तो सर्व बदल जाएगा, ऊपर का ढांचा बदल जाएगा, आत्मा तो वही रहेगी, सेम वाइन इन न्यू बोटल, शराब तो वही पुराना किंतु नए बोटल में उसको भव्या रंग लिया, अतः वो जो शरीर था वो बदल करके दूसरे शरीर में आ गया। तो वो कहता है अच्छा अभी मर गए तुम्हारे क्या लगते हैं, पत्नी से पूछा अब क्या लगता है उनको, तो मैं देखती नहीं हूँ, अब तो कोई संबंध नहीं, तो काल्पनिक एक संबंध है जैसे हमारे पति थे बस इतना है और कुछ नहीं, ऐसे ही पिता पुत्र भाई बंधु और सब समाज का समझना चाहिए, ये रियलिटी है। इस चीज का ज्ञान होने से अपने आप सुख और शांति आ जाए, और जब तक नहीं जानते हैं तब तक संसार के चक्र में कभी स्त्री कभी पुरुष कभी गरीब कभी दरिद्र कभी देवता कभी मनुष्य कभी पशु कभी पक्षी कभी कीट कभी पतंग कभी पेड़ कभी बाघ भालू कभी कुछ इस तरह से ज्ञान। अच्छा ये बतलाओ ये शरीर के साथ में तुम्हारा संबंध है ना आत्मा के साथ में था? हम लोग का संबंध तो शरीर ही से है, आत्मा के साथ में नहीं था। देखो पहले एक कबूतर रहता था और कबूतर को एक उसकी बड़ी प्रिया कबूतरी थी, दोनों को बच्चे हुए, अंडे लगाए, अंडे से छोटे छोटे फुदकते हुए बच्चे निकले, बहुत सुनता सुनता, अभी पंख भी नहीं निकले। ये बच्चों को खाने के लिए कुछ चुनने के लिए दाना वो चले, एक वन में गए, एक नदी बह रही थी सुंदर, पास ही में एक बगीचा था, हरी हरी घासें कालीन जैसे बिछी हुई है, जन सुंदर 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 पेड़ पौधे लगे हैं। वो एक पेड़ की डाल पर दोनों बैठ गए और सुख से बातें करने लगे, जैसे पति और पत्नी मिलकर के बातें करते हैं बड़े प्रेम से, बीते हुए विवाह कैसा हुआ, बच्चे कैसे हुए, पुराने जमाने की सब बातें, बचपन की बातें याद आती हैं, किसी ने एकदम रस भरी बातों में वो लग गए। थोड़ी देर के बाद में पत्नी ने देखा, कबूतरी ने देखा, सुंदर सुंदर चावल के कण कुछ बिखरे हुए हैं घासों के ऊपर, जीभ से पानी आ गया, बोली पति से, ये प्रियतम सुंदर सुंदर चावल के मोती जैसे कण हैं, इनको खुद भी खाएंगे बच्चों को भी खिलाएंगे, चलिए हम लोग जा करके दाना को चुने। पति ने कहा खबरदार मत जाना, इस जंगल में चावल के कण कहाँ से आए, यहाँ पर कोई बनिया है या खेती बाड़ी हो रही है, मैं कहाँ से आया, मत जाओ, कोई बहेलिया जाल लगाए हुए बैठे हैं, और तुम जाएगी जाल फेंक देगा, तुम पकड़ में आ जाएगी, तुम्हारा मान खा लेगा, बस खत्म हो जाएगा। पर ये आप पुरुषों को सब समय ऐसे ही बातें होती हैं, षड्यंत्र पुरुषों की बात है, इसलिए तुम ऐसा करो मैं नहीं जाता। इसने कहा कि मैं तो जाती हूँ, ये कह करके फुर उड़ी और जाकर के सुनने लगी जाने। और इतने में बहेलिए ने देखा कि अब तो जाल में आ गई, बस खींच दिया और उसके अंदर में, अब तो विलाप करने लगी, पुरुष भी डाल से नीचे उतर करके और विलाप करने लगे। जैसे तू हमारी प्रिया, दोनों प्रेम से रहते थे, अब बच्चे को कौन देखेगा, मेरे से तो होगा नहीं, मैं तो बच्चों को देख नहीं सकता, इतना तुम मैया है उनकी, तुम देखो, अब उससे पालन पोषण तुम का होगा नहीं, मैं यदि मर जाता तुम जीवित रहती तो ये काम होगा। ऐसे बातचीत कर रहे थे और वो विलाप कर रहा था, वो एक जाल के अंदर में पड़ी हुई और एक बाहर, बस बहेलिए ने हंसा, बड़ा चूर था, बस वहीं से बाण मारा, बस कबूतर के छाती में लगा, वो भी ढेर हो गई, और दोनों को पकड़ के हाथ हाथ से और हंसते हुए दोनों को बांध करके पीठ पर ले सकते। तो जो नहीं मरे हैं वो भी कल मरे हैं, अभी जो नवयुवक हैं, जो बच्चे हैं वो बड़े होंगे, जो युवक हैं वो वृद्ध होंगे, जो वृद्ध होंगे अपना शरीर बदल देंगे, ये तो ध्रुव नीति, यही गीता सिखलाती है। गीता में ऐसा सुंदर उपाय उपदेश है जो विश्व के किसी भी ग्रंथ में नहीं है। गांधी जी इसी को बगल में सब समय रखते थे, इसे शांति मिलती है, जीवन में रहने की एक कला आती है। ये समझो कि मैं कृष्ण का दास, मैं अजर अमर हूं, इस आत्मा को हमको जानने कैसे होगा, सरल सहज रूप में हो जाएगा। पैसा कमाना बहुत कठिन है, ये बात तो ठीक है, किंतु भगवान का भजन करना कठिन नहीं है, सहज है। घर में बैठे रहो, सब काम करते रहो और हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम
हरे राम, बस इसी से ही होगा। विश्वास रखो कि ये नाम ही भगवान है और सरल सहज रूप में उनका कभी स्मरण कर लिया, कभी कीर्तन कर लिया, और अपने घर को समझो जिसे ये प्रभु का है। मैं तो देखभाल करने के लिए एक नौकर की तरफ ही संसार में हूँ, जो कुछ है सब दायित्व उनका है, जो कुछ करते हैं सब प्रभु के चरणों में न्योछावर करते हैं। हमारे जितने बच्चे हैं प्रभु के हैं, मैं भी प्रभु का हूँ, हमारी पत्नी प्रभु की है। इस तरह से करने से ट्रस्टी बन करके रहने में तस्ति मैंने क्या सेवा, इसमें आनंद है, कभी शोक मोह नहीं होगा। इन्होंने बहुत प्रयत्न किया होगा, बच्चे ने भी बहुत प्रयत्न किया होगा जो मैया को रखने। कितनी उम्र थी? 55। तो अभी तो कोई अधिक नहीं, अभी थोड़ी सी उम्र।
बहुत सेवा की है,
बहुत सेवा किया ना। आप लोग हरनाम करेंगे, यही सबसे बड़ी उनकी सच्ची सेवा। उन्होंने जो सेवा किया उनका स्मरण करेंगे, उनको हरि नाम सुनाएंगे, हरे कृष्ण बैठ करके अकेले 5 मिनट भी बैठेंगे, ये आपको शांति देगी, उनको भी शांति देगी और परिवार के सभी लोगों को।
कातुरया जुहा पुत्रेति तन्मयतया तनोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतुस्मि भक्त्या विहीनाय पराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्यै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृंदे नमस्ते चरणारविंदम।
भगवान की कृपा से आज श्रीमद् भागवत का अंतिम दिवस चल रहा है। कल इसकी पूर्ण रूप से विधिवत समापन इसका होगा, आज ही कथा करी करी समाप्त होगी, कल इसकी बची खुची कुछ कुछ उपदेश हम लोग उसको ग्रहण करेंगे। अभी मैं श्रीमद् भागवत से उसका एक प्रसंग कहने जा रहा था। अभी एक महोदय ने थोड़ा सा प्रश्न किया, मैं उसका उत्तर दे करके तब फिर उसको आरंभ करूंगा। उनका प्रश्न यह है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैंने कल बतलाया था कि श्रीमद् भागवत का यह सार है, यह महामंत्र है। तो इसकी क्या विशेषताएं हैं और इसमें हरे शब्द का क्या तात्पर्य, कृष्ण का और राम का क्या तात्पर्य है? पहले मैं इस विषय में ये बतलाना चाहता हूं कि बहुत से लोग हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 करते हैं। पहले राम को लेते हैं, पीछे से कृष्ण कृष्ण को लेते हैं। विशेष करके गीता प्रेस के ऊपर जितने भी पुस्तकें और पत्रिकाएं हैं उसमें इसी तरह से दिया गया है। गीता प्रेस आधुनिक प्रेस है, अधिक से अधिक 100 वर्ष भी नहीं हुआ होगा, हम समझे 75-76 वर्ष हो गए इसकी स्थापना के। उन लोगों का यह भाव है कि पहले रामचंद्र जी का आविर्भाव हुआ था, जन्म हुआ था त्रेता में और द्वापर में, उसके पीछे से कृष्ण हुए, इसलिए पहले क्यों नहीं राम का हो, पहले राम का नाम आना चाहिए, इसके बाद में कृष्ण का पीछे से आना चाहिए। युक्ति जहां तक है वहां तक तो ये ठीक है, यदि राम पहले आए हों और कृष्ण पीछे आए हों तो ऐसा कोई करने में तो आपत्ति नहीं है। जिलेबी का कौन सा भाग पहले खाया जाए, पहला है, और जिलेबी का कौन सा भाग पिछला है, सालग्राम का कौन सा आगे है, मुख किधर है और पैर किधर है, ये सब विचार नहीं होता। तो भी कुछ विचार है, पहले से ये भी बतलाया जाए कि राम पहले आए हैं कि कृष्ण आए हैं। वर्षों की गणना से जब वर्षों की गणना करते हैं तो उसमें देखते हैं कि पहला युग कौन सा है, सत्ययुग, वहीं से आरंभ, तो उसको एकाई मान लिया जाए। एक दूसरा युग होगा कौन सा, त्रेता, ऐसे कहते हैं। तो एक के बाद में तीन कैसे आ गया, पहले होना चाहिए 1-2-3-4, किंतु इसमें हम देखते हैं कि पहले सत्ययुग एक और इसके बाद में त्रेता तीन, और दो माने द्वापर, ये तीसरा आ गया और चौथा हो गया कलयुग। तो एक दो तीन चार ये ठीक है गणना के हिसाब से, अथवा एक तीन दो चार कौन सा ठीक है? एक तीन दो चार ये ठीक है, एक दो तीन चार होना चाहिए। पहले होना चाहिए एक सतयुग, इसके बाद आएगा दो पर जिसके हैं द्वापर, इसके बाद तीन तीन गुण वो हो गया त्रेता, और इसके बाद हो गया ये कलयुग। बात ऐसी हुई कि सतयुग में अहिल्या जी गौतम की स्त्री थी। गौतम जी कुछ ऐसी तपस्या कर रहे थे जो इंद्र उस पर भड़क गया, सोचा जी हमारा ये स्वर्ग लेना चाहते, इसलिए सोचा जी किसी प्रकार से इसमें क्रोध उत्पन्न कर दें तो उसका तपस्या का फल गिर जाएगा तो वो स्वर्ग नहीं मिले। इसलिए वो एक रूप धारण करके गौतम जी का ही रात में आया, जबकि गौतम जी स्नान करने जा रहे थे गंगा, और उन्हीं का रूप धारण करके और चंद्र को अपना साथी बना करके उसकी सहायता से उनके घर में घुस गया और गौतम जी का रूप बना लिया। चंद्र ने क्या किया, सहायता कैसे दिया? रात तो अभी आधी रात थी, किंतु चंद्र थोड़ा सा नीचे आ गया, झुक गया। अब इससे मालूम हुआ जैसे वो अब यह रात समाप्त होने वाली है, बस उनके घर में घुस गया। इतने में उनको पता चला, जब गए पता, अरे ये तो बहुत रात है, वहां से लौटे, इतने में देखा घबरा करके इंद्र वहां से उन्हीं का रूप बना करके आया। कहा जी हमारा रूप क्यों बनाया इसने, जरूर कुछ गड़बड़ी है। इतने में चंद्र वहां से निकला, उसमें मृगशाला लेकर के जा रहे थे, मृगशाला से मारा उनको और इंद्र को अभी संपात दिया। फिर अपनी पत्नी को के पास में गया, तुमने जानबूझ करके ऐसा तुमने अनाचार और स्वेच्छाचार क्यों की? वो समझ गए ये जानबूझ करके किया, हमारा रूप धारण करके गया, उसको समझ करके भी ऐसा किया, जाओ तुम पाषाणी बन जाओ, बस वो पत्थर बन गई। अब तो रोने बिलबिलाने लगी, जैसे भी अपनी पत्नी को है रोने लगी, क्षमा मांगने लगी। उन्हें कहा अच्छा एक बात करो, अभी रामचंद्र जी का अवतार होने वाला है तो उस समय में तुम त्रेता में वो आएंगे और आकर के अपने चरणों की धूली देंगे, बस तुम तर जाएगी, फिर तुम हमारे पास में आ जाएगी। उन्हें अभी तो बहुत देर है, अभी सतयुग जाएगा, इसके बाद में द्वापर जाएगा, इसके बाद तो त्रेता आएगा तीसरा युग, तो ये बहुत दिन में कैसे विरह समझूं संभालूं। अच्छा ये तुम्हारे लिए ऐसा कर देते हैं, इस बार आ जाएगा त्रेता, इसके बाद में आएगा द्वापर, इसलिए कुछ क्रम में परिवर्तन हुआ है। हमारा ये कहना है इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, आराधना और उपासना होती है एक ही, दो नौका में पैर रखने से या मन रखने से नहीं होता। यहां पर हरे कृष्ण मंत्र में राम का कहीं उल्लेख ही नहीं, यहां पर जो राम है वो राधा रमण राम है, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, इसलिए राम माने राधा से रमयती, राधा रमयती इति रामः, एक उपास्य है। और जो यहां पर हरे है, जिनका महोदय ने अर्थ पूछा है, हरे के माने दो तात्पर्य होता है, एक हरि से हरे होता है और एक हरा से हरि हरे होता है। विश्व ब्रह्मांड के चित्त को जो हरण करते हैं अपने रूप से गुण से लीला से, वो हरि कृष्ण है। हमारे पापों को जो हरण कर लेते हैं वो हरि हैं। एक बार हरि नाम उच्चारण किया, हरि हरि, उसके समस्त पाप दूर हो जाएंगे। इसके बाद में दूसरा बार यदि हरि उच्चारण किया तो अपना रूप दर्शन दे करके और चित्त को हरण कर लेते हैं। ऐसे ये कौन है? ये हरि कृष्ण है। किंतु एक और भी कोई है जो विश्व ब्रह्मांड के चित्त को हरण करते हैं, उसके भी चित्त को हरण करने वाली श्रीमती राधिका जी हैं। कृष्ण सबको मोहित कर देते हैं किंतु खुद मोहित हो जाते हैं उनसे, वो राधिका जी हैं, इसलिए उनका नाम है हरा। कृष्ण के चित्त को हरण करने वाली होना होने से उनका नाम हो गया है हरा, इसलिए हरा का संबोधन में हो गया हरे। जैसे सीता आकार एकार हो जाता है, ऐसे यहां पर हरा का हो गया है हरे, अर्थात कृष्ण के चित्त को भी हरण करने वाली। इसलिए यहाँ पर जोड़ी है, जुगल जोड़ी, हरे कृष्ण माने राधा कृष्ण और हरे राम, हरे माने राधिके, उनके साथ में बैठेंगे कौन, राधारण महणि गोविंद ले जाएगा, इसलिए यहाँ पर भी जोड़ी है। इसमें 8 जोड़ियां हैं और 16 नाम हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये 16 नाम हैं और उसमें 8 जोड़ियां हैं। ये जोड़ी क्या है, राधा कृष्ण की जुगल जोड़ी है। इसलिए शक्ति और शक्तिमान के साथ में यहाँ उपासना की बात आई है, इसलिए राधा रमण में राधा और कृष्ण और इधर में भी हरे कृष्ण राधा कृष्ण एक की उपासना है, इसमें दूसरा कुछ नहीं आया है। एक व्यक्ति दोनों की उपासना राम की और कृष्ण की दोनों नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, राम ही तो कृष्ण है, कृष्ण ही तो राम है, सीता जी राधा जी हैं, राधा जी सीता जी हैं, फिर क्यों नहीं कर सकता। लीलाओं में वैशिष्ट्य है, एक में ऐश्वर्य है एक में माधुर्य है, इसलिए दोनों की उपासना एक साथ में नहीं होगी, यह रसगत एक दोष हो जाएगा, रसाभास हो जाएगा। इसलिए या तो राम की ही उपासना होगी, इसमें क्या है मर्यादा, मर्यादा से जो भगवान की सेवा करना चाहता है वो सीता जी और राम जी का भजन करे, हाथ जोड़ करके सेवक की भांति, और सीता जी को प्रत्याग कर देते हैं तभी सीता जी हाथ जोड़ करके ठीक मैं बन जा रही हूं, ये मर्यादा की बात है। रामचंद्र जी सब समय मर्यादा में बंधे होने के कारण में कोई भी डिसीजन लिया वो मर्यादा में रख करके किया, कोई भी बात रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय बरुख वचन में जाई, जिसको दशरथ ने कहा, रघु जी ने कहा, दिलीप ने कहा, रामचंद्र जी ने भी उसका पिताजी के आदेश के लिए मैं वन में चला जाऊंगा, मैं तो प्राण भी छोड़ सकता हूं, ये सब मर्यादाएं हैं। रामचंद्र जी मर्यादा में बंधे हुए हैं, जब कृष्ण ही मर्यादा के रूप में आते हैं तो वो सीताराम के रूप में उपास्य होते हैं, और जिस समय में माधुर्य भाव अधिक होता है, कृष्ण राधा जी के कुंज में गए हैं और किसी तरह से वो उनको कुछ मान हो गया, रामचंद्र जी ने सीता जी को घर से बाहर कर दिया और राधा जी क्या कहेंगे, हमारे कुंज से निकल जाओ, घर में रहो, इधर में मत आना, कृष्ण इसको मानने के लिए बाध्य हैं, गिड़गिड़ाते हैं, यह है मधुर लीला है। कृष्ण उस प्रेम के द्वारा वशीभूत हो गए, राम वशीभूत नहीं हो सकते, मर्यादा सब समय का, सीता जी रोते 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 सारा जीवन कायल रहे, वो न पिघलेंगे न कुछ होगा। और दूसरे तरफ में कृष्ण का माधुर्य इतना अधिक है, ये प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं, मर्यादा वहां पर निकाल करके रख देते हैं, फिर भी उसमें प्रेम की मर्यादा रहती, यही प्रेम की मर्यादा है। प्रेम की मर्यादा क्या है, राधा जी के चरणों की को पलटना ही, उनके आदेश को पालन करना ही, ये प्रेम की मर्यादा है, और वो मर्यादा है ऐश्वर्य की मर्यादा। इसलिए दोनों व्यक्ति, एक व्यक्ति जो इस विषय को नहीं जानता वो ऐसा कह सकता है ये दोनों उपास्य हैं, किंतु दो उपास्य नहीं होते, एक ही उपास्य होगा, वो राधा कृष्ण होंगे। इसलिए इस मंत्र में यही राधा कृष्ण की उपासना की बात कही गई है। श्रीमद् भागवत का सार किस लिए है, ये रास में क्या हुआ, जो लक्ष्मी जी को प्राप्त नहीं हुआ, कृष्ण ने अपने नित्य के समय में अपने दोनों हाथों को गोपियों के गले में डाल दिया, झूल गए, लक्ष्मी जी को यह सौभाग्य नहीं मिला, किस लिए झूल गए, कहीं हमें छोड़कर के फिर न चले जाएं, ये राधा की है। पहली बार रास्ते निकल गई तो कृष्ण को वहां से अफसोस करते हुए पीछे पीछे उनको दौड़ना पड़ा, इसलिए राधा जी या गोपियां हमें छोड़कर के फिर विरह अवस्था में न डाल दें, इसलिए गले में दे देते हैं, लक्ष्मी जी को यह सौभाग्य नहीं है, सत्यभामा को नहीं है, सीता जी के लिए तो बहुत दूर की बात, वही राधा जी हैं, किंतु यहां पर मर्यादा है और वहां पर मर्यादा को तोड़ दिया है। इसलिए इस प्रकार का जो मधुर भाव से राधिका जी का दासी होकर के यदि कोई भजन करना चाहता है ब्रज का भजन, तब तो इधर में आना पड़ेगा, और हरे कृष्ण का तात्पर्य वो हरे से राधा जी को लेना पड़ेगा और राम से राधा रमण कृष्ण, तब एक उपास्य होगा। इस तरह से इसके तो इसमें रास के समय में राधा जी कृष्ण को आकर्षण करती हैं, उनके चित्त को हरण कर लेती हैं, तो आपने देखा ही है भागवत में। इसलिए यह भागवत का भी सार है, एक ही जगह नहीं कितनी जगह में ऐसा दिखा है। अने आराधितो नूनन भगवान हरिश्वर, राधा जी की ऐसी आराधना है कि कृष्ण उनके वशीभूत हो जाते हैं, उनको एकांत में लेकर के अपने वस्तस्थल में बहन करके उनको ले जा रहे हैं, सब गोपियों के सामने ही सबको छोड़ दिया और इनको लेकर के चले गए। तो इसमें आराधना की बात होती है, ये महामंत्र से राधा कृष्ण की ऐसी उत्तम आराधना होती है और एक निश्चित भाव रहता है कि और किसी जीव में नहीं रहता। दूसरी बात, श्रीमद् भागवत में पढ़ते समय जब, अब तो भागवत करिकल समाप्त हो रहा है, एक शंका उठती है, एक नहीं दो शंकाएं होती हैं और अधिकांश लोग इससे तथ्य से अवगत नहीं है। मैं इसका निराकरण कर देना मैं आवश्यक समझता हूं। पहली बात, परीक्षित महाराज 7 दिन तक भागवत सुने और उनको सांप ने काट दिया, मर गए, मरे कि नहीं अंत में 7 दिन के बाद में, भागवत का फल क्या हुआ जो 7 दिन के बाद में सांप आकर के काट देता है वो मर गए? तो भागवत सुनने का यही फल हुआ जो सांप काट दे वो मर गए। इसका तात्पर्य क्या? भागवत 7 दिन सुना, अंत में मर गए, विष उनको चढ़ गया, शरीर जल गया। और दूसरी बात, कृष्ण स्वयं भगवान हैं और एक बहेलिया ने उनको बाण मारा, अब मर गए। द्वारका लीला की समाप्ति में क्या होता है? एक बहेलिया बैठा था और ये पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। बहेलिया कुछ आक्षेप करने के लिए आया, शिकार खेलने के लिए, दूर से देखा, अरे ये तो मालूम होता कि हिरण का ये जीभ है और मुख है, बचपन से बाण मारा और उनको लग गया। इसके बाद में कृष्ण मर गए, फिर उनका वहीं पर श्राद्ध संस्कार जो अंतिम संस्कार है वो कर दिया। बहुत से लोग ऐसे तो यदि भगवान की ये दशा है तो जीवों की क्या दशा होगी? और ये कृष्ण भागवत नहीं सुने थे न, कि कौन बोला भागवत? भागवत जिस कृष्ण का चरित्र ये भागवत है, जिसके सुनने से ऐसी परम गति हो जाती है, और कृष्ण को बहेलिए ने मैं सिब्रिजम का करने वाला पीसी सरकार था, उसमें बहुत से लोग जानते हैं उसका नाम। कलकत्ता में उसने कहा, आज मिलिट्री एरिया में जहाँ पर कि गवर्नर बंगाल के थे और वहाँ के सबसे बड़े पुलिस के अफसर थे, बड़े बड़े अफसर लोग वहाँ पर एकत्रित हुए थे, उन्होंने कहा आज मुझे 5 मिनट का समय दिया जाए, एक खेल दिखाऊंगा। उन्होंने कहा अच्छा, बहुत मनोरंजन हो जाएगा खेल दिखाना। तो वो जी ठीक 4 बजे मैं आऊंगा, 4 बजे तक सब लोग आ गए। मिलिट्री वाले सब टाइम के बड़े पंक्चुअल होते हैं, बस एकदम टाइम पर 4 बजे आ गए। 4 बज गया, 4:15 बज गया, 4:30 बज गया, ठीक है 5 बजने को जब ठीक है, तो वो पान खाता हुआ मुस्कुराता हुआ सभा में घुसा और सब लोग बड़े उस पर बिगड़े हुए हैं, गवर्नर से लेकर के बड़े बड़े अफसर तक, पुलिस अफसर तक। आएगा तो उसको हम उसे डांटेंगे। तो आते ही वो तो मुस्कुराता हुआ आ रहा है, पान खाता हुआ बेपरवाह, लोग उस पर बड़े बिगड़े। हम लोग 4 बजे से बैठे हुए हैं, आत्म को ज्ञान नहीं जैसे इसमें गवर्नर बैठे हुए हैं और कौन कौन सा बैठे हुए हैं, तुम 5 बजे आया, 5 बजे, 5 बज गया। आप लोग घड़ी तो देखिए, तो घड़ी देखा जी ठीक कांटे का 4 बजा हुआ है।
एक मिनट में लेट नहीं कर सकता, मैं ठीक समय पर, आप लोग यदि पहले आ जाएं तो मैं क्या करूं, यह मेरा पहला खेल है। नहीं? इतने लोगों को ऐसा कर दिया। तो यदि नट ऐसा कर सकता है तो कृष्ण नहीं कर सकते। अब इसी को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने टीका में दिया, जहां यह प्रसंग आया है। एक नट था, वो किशोर उम्र का था, उसकी स्त्री भी बड़ी किशोर उम्र की थी, और उसके दो बेटे थे, एक 7 वर्ष का, एक 9 वर्ष का, बड़े सुंदर सुकांग, बड़े बलिष्ठ। ये चारों आए महाराज के पास में, उन्होंने कहा कि हम लोग कुछ खेल दिखलाएंगे, यदि कृपा करके आप लोग दर्शन करें तो उसको कुछ हमको पुरस्कार मिल जाएगा, हमारा चल जाएगा। कहे ठीक है। सुंदर सुंदर रस्सी पचड़ करके नित्य इत्यादि किया, और वो प्रसन्न हो गई रानी। रानी ने अपना गले का हार लेकर के दे दिया उसको, बड़ी प्रसन्न हो गई। उसने अपने बेटे के, जो दोनों खड़े थे, उन्होंने कहा मैया हमको दे, मैया हमको दे, बस उसने गले से निकाला, किंतु दोनों बच्चे खींचने लगे, वो छोटा इधर बड़ा इधर। मैया ने कहा जी मैं क्या करूं, ये दोनों खींच रहे हैं, तो उसने बीच में लेकर के छोड़ दिया, जो जो होगा वो खींच लेगा अपने तरफ, तो वो खींचातानी करने लगे। जब खींचातानी, इसने एक को क्रोध आ गया, तलवार निकाला, तो दूसरे ने तलवार निकाल ली, नैन में तलवार थी दोनों की, और दोनों ने तलवार लेकर के एक साथ दोनों पर वार किया, वो कट गया, वो कट गया, और हार गिर गया। उस वो जो नट की स्त्री थी, उसने देखा है हमारे दोनों बच्चे मर गए, दौड़ करके आई और तलवार उठाया, गला काट लिया। और इतने में वो जो नट था, अरे हमारे बच्चे और स्त्री भी मर गई, उसने भी तलवार उठाई और काट लिया, चारों ढेर हो गई। लाल प्रसन्नता मासूमी में एकदम बदल गई, शोक की लहर दौड़ गई, बड़ा दुख हुआ। राजा ने कहा जाए भाई इसको फेंकवा दो, उसको फेंकवा दिया गया। बड़े दुखी है, एक बड़ी प्रसन्नता के मनोरंजन के लिए हम कर रहे थे, चार पढ़ियों यहाँ पर मर गए, क्या किया। दूसरे दिन सवेरे एक घर में पत्र आया, महाराज हमने खेल जो दिखलाया था पहले, तो वो हार आपने दिया, किंतु जो दूसरी खेल हमने दिखलाई उसका कुछ पुरस्कार नहीं मिला। आप ये मत सोचिए जो मैं मर गई और ये मर गए हैं हमारे सब, हम लोग घर में आनंद खुशी राजी से पहुंचे हुए हैं। आपको यदि ये विश्वास ना हो तो हमारे घर पर चले आइए। रानी को कहारी ये बच गए कैसे, ये तो मर गए थे। बस पति को साथ लिया और सभासदों को, उसे घर पर गई, देखा जी पहले से उनको पता है जी आ रहे हैं, बस फूल की माला लेकर के, उपहार लेकर के, और एकदम हंसते हुए उनका अभिनंदन किया। कहा जैसे अब हमको इसका ये जो है उसको मिलना चाहिए, हम लोग मरे नहीं तो खेल दिखलाया था, ये आंख को बांध दिया था हमने, ऐसा किया। और जो प्रभु का प्रभु जो विश्व ब्रह्मांड की रचना करने वाला है, एक ऐसी लीला नहीं कर सकता। ये बहेलिया वाला जो बात है, जो उसने बाण मारा है, ये सब क्या चीज है, ये माया है। ऐसी कोई चीज नहीं हुई, किंतु लोगों को भ्रमित करने के लिए, असुरों को मोहित करने के लिए, और भक्तों को आनंदित करने के लिए ऐसी लीला के माध्यम से अपने परिकरों के साथ में सब चले गए वो बैकुंठ में, वृंदावन में। किंतु ये लीला केवल दिखलाने के लिए रही, लोगों को मोहित करने के लिए, वास्तविक में ऐसा नहीं हुआ। जो काली हृदय में गिर करके मर नहीं सकता, एक बहलिए के बाण से मर जाएगा। सांप ने कहां कहां यहां यहां सब काटा, जो आग खा गया मरा नहीं, जो गोवर्धन पर्वत को भीष्म पितामह के बाणों से नहीं मरे, कर्ण के बाणों से नहीं मरे, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से नहीं मरे, और उनको एक एक तीर, उसमें थोड़ा सा कुछ विष लग गया है, अब उसे मर जाएंगे। अरे उनका तो शरीर और शारीरिक शरीर और उनकी आत्मा दोनों एक चीज है, सच्चिदानंद, वो तो कभी मर ही नहीं सकते हैं। हाँ, अपने मरे हुए गुरु पुत्रों को लौटा दिया, मरे हुए को, फिर वो मर जाएंगे। भगवान कभी मरते नहीं है, ये उनकी लीला थी, इस प्रकार से लोगों को देखा करके मोहित कर दिया, क्योंकि वो ऐसी ही नर्तक लीला करते हैं। दूसरी बात, वो मैं सिर्फ मैं जन्म थी, तो दूसरी बात परीक्षित महाराज क्या क्या हुआ। परीक्षित महाराज जी भागवत सुन रहे थे, 7 दिन अब हो गया, हमारे इन्होंने सुखदेव गोस्वामी ने कहा जी अब तुमको भागवत सुना दिया, तुम अमर हो गया, तुम्हारा जीवन कृतार्थ हो गया। जो भागवत सुनता है उसका ये जो फल है, मैं तुमको बतलाया है, मैंने पहले बतलाया धर्म प्रोद्धित कई तो वो अत्र परमो निर्मर्शनानं वेद्यम वास्तवम वस्तु शिवदम तात्रयो उन्मीलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परे ईश्वर सद्यवरुद्यते अत्र सुत्री कृतिभी तत्क्षणा। यदि भागवत का कोई श्रवण करता है जिसको व्यास जी ने बतलाया है, जिसमें मुक्ति तक की भी उन्होंने काट करके खत्म कर दिया, मुक्ति भी नहीं चाहिए केवल कृष्ण का प्रेम चाहिए, इस व्यास देव के द्वारा ये श्रीमद भागवत जो बनाया है, इसके श्रवण मात्र से ही कैसा श्रवण करे, श्रद्धापूर्वक यदि श्रवण कोई करता है तत्क्षणात् कृष्ण उसके वशीभूत हो जाते हैं, कभी हृदय से निकलते नहीं। दूसरी बात एक और कहा, श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम जद वैष्णवानाम परम जद वैष्णवानाम प्रिय जस्मिन पारमहंसम अमलम ज्ञानम परम गीयते जत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्मम आविष्कृते तत्श्रीमन सुपरण पठन विचारण परो भक्त्या विमुच्यन्नरः। क्या तात्पर्य, श्रीमद् भागवत एक अमल प्रमाण ग्रंथ है और अब पुराण में कुछ गलती हो सकती है, एकदम विमल प्रमाण है। ये महाभारत का अर्थ है, वेदों का अर्थ है, अथोयं ब्रह्म सूत्राणां भारतार्थ वीणायण गायत्री भाष्य असौ, गायत्री का भाष्य है और वेदों का परपक्व ये फल है वेदरूपी कल्पतरू का, ऐसा श्रीमद् भागवत है। इसको पान करने वाला व्यक्ति कभी भी मर नहीं सकता, अजर अमर नित्य शाश्वत होकर के कृष्ण की सेवा में पहुंच जाता है। तत्क्षणात् विमुच्यते, विमुच्यते माने क्या, मनुष्य मुक्ति से ऊपर का विशेष रूप से मुक्त होकर के कृष्ण के चरणों में प्रेम पा लेता है, कभी उसकी मृत्यु नहीं होती, ये फल बतलाया। और एक फल बतलाया, जस्या वै सूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति रूप पद देते पुंसा शोक मोह भयापह। व्यास जी ने भक्ति योग के समाधि में कृष्ण की लीलाओं का दर्शन किया और जब मनुष्य के कल्याण के लिए उसको भागवत के रूप में लिपिबद्ध किया और अपने बेटे सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाया, उन्होंने जगत में इसका प्रचार किया, तो उन्होंने जिस भागवत को लिखा वो भागवत माने भगवान ही है। उसके श्रवण का फल क्या है, जस्या वै सू वै माने निश्चित रूप में, कोई संदेह की बात मत करना, ये इधर उधर फल जाएगा नहीं, जो कहते हैं वही होगा। क्या, जस्या वै श्रूयमाणायाम पुरुषे, जो साक्षात पुरुष कौन है, एते चांद कला पुंस कृष्णत्व भगवान, कृष्ण ही स्वयं भगवान है, जो राधा जी के साथ में है वो स्वयं भगवान है, यहाँ पर राधा जी नहीं है वो साक्षात भगवान नहीं है, द्वारका में रहने वाले द्वारकाधीश हैं, किंतु राधा जी और ब्रज की गोपियों के साथ रहने वाले यही स्वयं भगवान है, ये साक्षात जो परम पुरुष हैं इनकी आराधना हो जाती है। जैसे अब सुई मारणाम कृष्ण परम पुरुष से भक्ति उपपद्यते पुंसंग शोक मोह भय, उसमें शोक मोह भय दूर हो जाता है, जगत से ऊपर उठ जाता है। ऐसा जबकि फल ये बतलाया गया और परीक्षित महाराज को सांप काट दिया वो मर गए, तो 7 दिन उन्होंने सुना नहीं, 7 दिन सुना और उन्होंने उनके गुरु जी ने कहा ये फल तुमको जरूर होगा, तो उनको फल कहां प्राप्त हुआ। ऐसा हुआ 7वां दिन हो गया, भागवत समाप्त हो गया और उनके गुरु जी चले गए, उन्होंने गुरु जी की प्रदक्षिणा की, भागवत की प्रदक्षिणा की और अब समाधिस्थ होने वाले थे। इतने में उनकी मैया ने कहा, मैं मूढ़मती नारीमती, मैं ठीक से समझ नहीं सकी, आपने जो सुखदेव गोस्वामी से सुना सरल सहज भाषा में हमको बतला दी, उसका सार तात्पर्य उन्होंने सरल सहज रूप में उन्होंने बतलाया। गोपियों ने कृष्ण की जो आराधना की जिस भाव से, वही आराधना सबसे श्रेष्ठ है। आप भी कृष्ण को अपना परम प्रिय प्रियतम समझें, कृष्ण को अपना प्रियतम समझें, गोपियों के प्राण बल्लभ ही तुम्हारे प्राण बल्लभ ऐसा समझो। इसी के लिए 2 कहानियां कही, समय अनुसार में हम लोग उसको बतलाएंगे। तो अब वो जब कथा हो गई तो उन्होंने अपने शरीर से मन को निकाल लिया ध्यानस्थ होकर के, और मन से आत्मा को निकाल लिया, और आत्मा को लेकर के कहां ले गए, राधा कृष्ण के चरणों में गोलोक वृंदावन में पहुंचा दिया। अब शरीर में प्राण नहीं रहा, मन नहीं रहा, मन में से भी मन रहा भी तो उसमें से आत्मा को निकाल लिया और लेकर के कहां स्थापित कर दिया, राधा कृष्ण के चरणों में वृंदावन में उन्होंने स्थापित कर दिया। अब शरीर में यह शरीर क्या रहा, मरा हुआ जैसा है। इधर में क्या होता है, कश्यप नाम का एक ब्राह्मण, बहुत मंत्रविद, उसको धनवंतरी ही कहिए, वो आ रहा था। परीक्षित सभा में जाएंगे, सांप काटेगा मैं उनको ठीक कर दूंगा और मुहमांगान हमको पुरस्कार मिलेगा। जड़ी बूटियों को अपने दोनों थैलियों में भर करके एक एक से उत्तम औषधियां लेकर के आ रहा था। इतने में वो जो काल तक्षक था वो भी काला मुष्टंड भयंकर विकराल मूर्ति धारण करके आ रहा था। अब वो सांप होने वाला था, सांप होकर के वहां पर सूक्ष्म रूप में वहां पर पहुंचेगा, काटेगा। उसने देखा कि ये महात्मा जी कहां जा रहे हैं, ये कश्यप जी, ये तो बहुत मंत्र तंत्रविद है। उसे पूछा कि आप कहां जा रहे हैं महात्मन। मैं जा रहा परीक्षित की सभा में। किस लिए जा रहे हैं? तो जा रहा इसलिए कि परीक्षित महाराज जी को आज सांप काटने वाला है और समय हो गया है, अब थोड़ी देर में वो आएगा, मैं भी पहुंचता हूं, उनको सांप काटेगा, मैं उनको जीवित कर दूंगा और आने दे, तुम लौट जा। नहीं भाई, हम उनको लौटना नहीं, हमको तो ठीक करना है। तो ठीक कर देगा कहां, तो मैं ही वही तक्षक हूं, अभी ऐसा रूप धारण करके जा रहा हूं और मैं उनको काटूंगा। तू एक बात कर, ये बट का विशाल वृक्ष है, इसको काटो तुम, मैं काटता हूं और ये जल करके खाक हो जाएगा, इसके नीचे की मूल तक नहीं रहेगी और तुम इसको जीवित कर दो।